एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिसने सच में दुनिया भर में काफी हलचल मचाई है और सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया है ना।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं युवाल नोआ हरारी की जबरदस्त किताब सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड, मतलब मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास।
सही।
और ये सिर्फ आप कह सकते हैं इतिहास नहीं है, ये तो हमारी अपनी कहानी है कि भाई हम इंसान आखिर हैं कौन और यहाँ तक पहुँचे कैसे।
और ये सवाल आज के समय में कितना जरूरी हो गया है। नहीं
हाँ,
मतलब ये किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि हम होमो सेपियंस, जो कभी अफ्रीका के कोने में रहने वाली कई मानव प्रजातियों में से एक थे,
हाँ कई थीं,
आज कैसे पूरी धरती पर मतलब छा गए हैं।
और ये सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है।
नहीं नहीं, ये हमें आज की बड़ी चुनौतियां समझने में भी मदद करती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन सबको एक बड़े दायरे में देखने का मौका मिलता है।
सही कहा। और साथ ही वो एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है जो शायद थोड़ा परेशान भी करता है।
कौन सा?
कि भाई इतनी तरक्की कर ली, इतनी ताकत आ गई, पर क्या हम वाकई पहले से ज्यादा खुश हैं?
ये तो बड़ा सवाल है।
हाँ, और इसका जवाब आसान तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प और गहरे सफर पे निकलते हैं, हमारी अपनी प्रजाति की कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले लेखक के बारे में भी थोड़ा जान लें। युवाल नोआ हरारी,
हाँ जरूर।
ये एक इजरायली इतिहासकार हैं, दार्शनिक भी हैं और यरूशलम की हिब्रू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ऑक्सफोर्ड से इन्होंने PhD की है इतिहास में।
हाँ, और मजे की बात यह है कि उनकी शुरुआती रिसर्च थी मध्यकालीन इतिहास पर और सैन्य इतिहास पर।
अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था।
हाँ, लेकिन फिर उन्होंने अपना दायरा बहुत बहुत बड़ा कर लिया और अब वो बिग हिस्ट्री या महा इतिहास के सबसे बड़े नामों में से एक हैं।
मतलब वो वाला नजरिया जो इतिहास को समझने के लिए बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स सबको साथ लाता है।
एग्जैक्टली वही।
और उनकी खासियत क्या है? वो इतनी सारी जानकारी अलग अलग फील्ड से लेते हैं और उसे एक एक कहानी की तरह बुन देते हैं।
बिल्कुल
बड़ी आसान मजेदार कहानी।
सही।
वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, वो पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ,
बिल्कुल
और जो हमारी बनी बनाई सोच है ना तरक्की के बारे में,
बिल्कुल।
उस पर सवाल उठाते हैं।
उनका अंदाज भी थोड़ा अलग है, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो बिना किसी लगाव के।
हाँ, जैसे कोई एलियन हमारी स्टडी कर रहा हो।
हाँ, कुछ वैसा ही जैसे कोई जीव विज्ञानी चींटियों को देखता है ना, उसी तरह वो धर्म या पैसा या राष्ट्र, इन सबको देखते हैं बड़ी तटस्थता से। और सैपियंस उनकी जो फेमस ट्रिलोजी है उसकी पहली किताब है। इसके बाद आई होमो ड्यूस और 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी।
हाँ, वो भी काफी मशहूर हुई।
तो अब आते हैं किताब पर, सेपियंस, आखिर इसकी कहानी है क्या?
देखिए, ये एक बहुत बहुत बड़ी कहानी है, हमारी पूरी प्रजाति की कहानी, लाखों साल पहले के हमारे पूर्वजों से लेकर
हाँ
आज तक, जहां हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं कि शायद हम जीवन के नियम ही बदल दें।
सही कहा। किताब का जो मुख्य सवाल है वो यही है कि हम होमो सेपियंस, जो कभी अफ्रीका के सवाना में भटकते थे, बाकी जानवरों या बाकी इंसानी प्रजातियों से इतने अलग कैसे हो गए?
हाँ, कैसे हमने पूरी दुनिया पर एक तरह से कब्जा कर लिया, चांद पर चले गए, एटम बॉम्ब बना लिया।
और हरारी का जवाब थोड़ा चौंकाता है। वो कहते हैं ये हमारी शारीरिक ताकत की वजह से नहीं हुआ, या अकेले हमारे दिमाग की तेजी से भी नहीं,
तो फिर
बल्कि हमारी एक अनोखी क्षमता की वजह से। और वो क्षमता है बड़ी संख्या में और बड़े लचीले ढंग से एक दूसरे के साथ सहयोग करना।
सहयोग? लेकिन वो तो और जानवर भी करते हैं।
हाँ, पर उस स्केल पर नहीं और उस लचीलेपन से नहीं। और ये सहयोग मुमकिन कैसे हुआ? हमारी कहानियां गढ़ने की काबिलियत से और उन कहानियों पर विश्वास करने की काबिलियत से।
अच्छा, कहानियां मतलब मिथक।
हाँ, मिथक कह लीजिए या साझा विश्वास, इस पर हम आगे बात करेंगे।
ठीक है,
और इस लंबे सफर को समझने के लिए हरारी हमें तीन बड़ी क्रांतियों के बारे में बताते हैं।
तीन क्रांतियां कौन कौन सी?
पहली है संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, करीब 70,000 साल पहले। इसने हमारे सोचने और बात करने का ढंग बदल दिया।
ओके।
दूसरी कृषि क्रांति, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, लगभग 10-12 हजार साल पहले, जब हम शिकारी से किसान बने। और तीसरी
है वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जो बस कोई 500 साल पहले शुरू हुई और आज भी चल रही है।
अच्छा, तो कहानी शुरू होती है उस टाइम से जब धरती पर हम अकेले इंसान नहीं थे।
हाँ, ये बात ही बहुतों को नहीं पता होती। कम से कम 6 अलग अलग इंसानी प्रजातियां थीं उस वक्त।
6? बाप रे। और फिर सवाल उठता है कि सिर्फ हम सेपियंस ही क्यों बचे, बाकी सब कहां गए? फिर किताब हमें हमारे शिकारी संग्राहक अतीत में ले जाती है, और फिर आती है कृषि क्रांति, जिसे हरारी क्या कहते हैं,
इतिहास का सबसे बड़ा धोखा।
हाँ, ये लाइन तो बहुत फेमस हुई है,
है ना?
सुनने में एकदम उल्टा लगता है, पर इसके पीछे उनके तर्क हैं।
और आखिर में किताब भविष्य की तरफ देखती है कि क्या हम खुद को बदलने वाले हैं, क्या होमो सेपियंस का अंत नजदीक है।
बहुत गहरे सवाल हैं।
हाँ।
चलिए इन पड़ावों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरू करें संज्ञानात्मक क्रांति से।
हाँ बिल्कुल, करीब 70,000 साल पहले कुछ कुछ हुआ हमारे दिमाग में।
हाँ, हरारी कहते हैं कि असली जो गेम चेंजर था वो हमारा बड़ा दिमाग नहीं था, या हमारे औजार नहीं थे, वो तो नियंडरथल के पास भी थे, हमसे बेहतर।
तो फिर क्या था?
असली बदलाव आया हमारे सोचने के तरीके में, और खासकर हमारी भाषा में।
हाँ।
शायद कोई छोटा सा जेनेटिक बदलाव हुआ, कोई म्यूटेशन जिसने दिमाग की वायरिंग बदल दी।
पर वो सबसे बड़ा आइडिया आता है किताब का।
हाँ, काल्पनिक भाषा, फिक्टिव लैंग्वेज।
इसका क्या मतलब हुआ, काल्पनिक भाषा?
मतलब हम इंसान उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जो असल में है ही नहीं, जिनका कोई फिजिकल रूप नहीं है।
जैसे?
जैसे भगवान, या कोई देश, भारत। भारत कोई पहाड़ या नदी तो है नहीं, ये एक आइडिया है।
या कोई कंपनी।
बिल्कुल, या पैसा। 100 का नोट क्या है, कागज का टुकड़ा?
या कानून, या मानवाधिकार, ये सब क्या है?
ये सब कहानियां हैं जिन पर हम सब यकीन करते हैं।
एग्जैक्टली, हरारी इन्हें कहते हैं कल्पित यथार्थ, इमेजिन रियलिटीज, या साझा मिथक,
शेयर्ड मिथ्स। ये सिर्फ हमारी मिलीजुली कल्पना में जिंदा हैं।
और ये इतना जरूरी क्यों है?
क्योंकि इसी क्षमता ने हमें वो चीज दी जो किसी और जानवर के पास नहीं है।
क्या?
बड़े पैमाने पर और लचीले ढंग से सहयोग करने की क्षमता।
लार्ज स्केल फ्लेक्सिबल कोऑपरेशन।
अच्छा,
मतलब हम हजारों लाखों अजनबियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
हाँ, क्योंकि हम सब एक ही कहानी में यकीन करते हैं, चाहे वो कहानी देश की हो, या किसी भगवान की, या किसी कंपनी के मिशन की। जैसे एक सेना,
या एक शहर।
बिल्कुल, चिंपैंजी शायद 50-100 के ग्रुप में ही ठीक से काम कर पाते हैं, उनमें आपस में जान पहचान जरूरी है। पर इंसान, हम लाखों अजनबी मिलके एक देश बना सकते हैं, एक कॉरपोरेशन चला सकते हैं।
तो ये हमारी सुपर पावर है एक तरह से।
हाँ, और हरारी का मानना है कि शायद यही वो वजह थी जिसने हमें न्यांडरथल जैसी दूसरी मानव प्रजातियों पर बढ़त दिला दी।
हाँ।
वो हमसे ज्यादा ताकतवर थे, उनका दिमाग भी बड़ा था, पर शायद वो इस तरह की बड़ी काल्पनिक कहानियां नहीं बना पाते थे।
तो पहला बड़ा सबक ये हुआ कि हमारी कल्पना की दुनिया ने हमारी असली दुनिया को, मतलब, बहुत ज्यादा आकार दिया है।
सही कहा, इतिहास को समझना है तो इन कहानियों को समझना होगा।
ओके, तो हमने सोचना सीखा, बड़ी कहानियां बनाना सीखा, और सहयोग करना सीखा। फिर क्या हुआ?
फिर आया अगला बड़ा मोड़, कृषि क्रांति।
हाँ।
लगभग 10-12 हजार साल पहले।
हाँ, और यहाँ हरारी फिर हमें चौंकाते हैं। इसे कहते हैं इतिहास का सबसे बड़ा धोखा।
है ना अजीब, हमें तो स्कूल में पढ़ाया गया कि खेती महान खोज थी, सभ्यता की शुरुआत हुई।
हाँ वही तो, लेकिन हरारी का तर्क बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं था कि चलो अब खेती करते हैं, ये एक धीमा जाल था, धीरे धीरे फंसते गए हम।
जाल कैसे? मतलब अनाज तो ज्यादा पैदा हुआ ना, आबादी बढ़ी।
हाँ आबादी तो बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक आम इंसान की जिंदगी बेहतर हुई? हरारी कहते हैं शायद नहीं, शायद बदतर हो गई।
बदतर? वो कैसे?
सोचिए, शिकारी संग्राहक थे, वो घूमते फिरते थे, कई तरह की चीजें खाते थे, फल, मेवे, शिकार, शायद दिन में कुछ ही घंटे काम करते थे, ज्यादा आजाद थे। किसान बनने के बाद एक ही जगह टिकना पड़ा, कमर तोड़ मेहनत, सुबह से शाम तक।
हाँ, खेती में मेहनत तो बहुत है।
और खाना, ज्यादातर एक दो तरह का अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, अक्सर पोषण कम।
अच्छा।
फिर अकाल का डर, पूरी फसल खराब हो गई तो भूखे मरो। बीमारियां एक जगह रहने से ज्यादा फैली। तो हरारी मजाक में कहते हैं कि हमने गेहूं को नहीं पाला, गेहूं ने हमें पालतू बना लिया, हम उसके गुलाम बन गए, उसकी देखभाल में लग गए।
ये तो बिल्कुल उल्टा नजरिया है।
और इसी को वो लग्जरी ट्रैप कहते हैं।
लग्जरी ट्रैप?
हाँ, मतलब शुरू में लगा होगा कि चलो एक जगह टिक जाते हैं, थोड़ा ज्यादा अनाज उगा लेते हैं, थोड़ी आसानी होगी, लेकिन ये थोड़ी सी सुविधा धीरे धीरे जरूरत बन गई।
कैसे?
आबादी बढ़ गई, अब इतने लोग हो गए कि वापस शिकार संग्रह करके गुजारा करना मुमकिन ही नहीं रहा, फंस गए, अब खेती करनी ही पड़ेगी चाहे जितनी भी मेहनत लगे।
ओह समझा, जैसे आज हम सोचते हैं ईमेल से आसानी हुई, पर अब ईमेल के बिना काम ही नहीं चलता।
हाँ कुछ वैसा ही, छोटी छोटी चीजें जो आराम के लिए शुरू होती हैं, वो जरूरत बन जाती हैं और हम उनसे बंध जाते हैं।
और खेती से और क्या बदला?
भविष्य की चिंता बहुत बढ़ गई। किसान को हमेशा कल की फिक्र रहती है, मौसम कैसा होगा, फसल होगी या नहीं।
हाँ ये तो है।
और जो एक्स्ट्रा अनाज पैदा हुआ उससे समाज में ऊंच नीच बनी, हायरार्की।
मतलब?
मतलब कुछ लोग, राजा, पुजारी, सैनिक, अफसर, वो खुद खेती नहीं करते थे, लेकिन वो किसानों की मेहनत से पैदा हुए अनाज पर जीते थे।
समाज बट गया।
अच्छा, और इस बंटवारे को, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फिर से क्या चाहिए?
कहानियां।
बिल्कुल, नए कल्पित यथार्थ, कानून बनाए गए, जमीन पर मालिकाना हक का आइडिया आया, देवताओं का हुक्म बताया गया कि राजा को टैक्स देना जरूरी है।
जैसे मेसोपोटामिया का हम्मुराबी कोड।
हाँ वो एक क्लासिक उदाहरण है, एक कहानी जिसने समाज के ऊंच नीच और नियमों को सही ठहराया।
तो खेती ना में बसाया तो सही, समाज भी ज्यादा जटिल हुए, पर खुशी वो शायद कम हो गई।
हरारी तो यही इशारा करते हैं, ये सवाल बार बार आता है किताब में।
खैर आगे बढ़ते हैं। अब दुनिया में अलग अलग जगहों पर ऐसे किसान समाज बन गए, तो ये सब आपस में जुड़े कैसे? अगला हिस्सा इसी पर है, मानव जाति का एकीकरण।
हाँ, the unification of humankind. कैसे हजारों सालों में ये अलग थलग सी संस्कृतियां धीरे धीरे एक ग्लोबल दुनिया की तरफ बढ़ीं। हरारी इसके लिए तीन बड़ी ताकतों की पहचान करते हैं।
तीन ताकतें?
हाँ।
कौन सी?
पहली, पैसा, मनी।
पैसा?
हाँ, इसे हरारी कहते हैं आपसी भरोसे का सबसे कामयाब सिस्टम जो इंसानों ने बनाया है।
ये बात तो सही लगती है।
सोचिए ना कितना अजीब है, आप किसी अनजान दुकानदार को कागज का नोट देते हैं।
हाँ।
और वो आपको सामान दे देता है। क्यों? क्योंकि आप दोनों मानते हैं कि कोई और भी इस कागज को मान लेगा।
हाँ।
पैसे ने धर्म और राजनीति से भी ज्यादा असरदार तरीके से अजनबियों को जोड़ा है, ये सीमाओं के पार काम करता है।
कमाल है।
दूसरी ताकत?
दूसरी?
साम्राज्य, एम्पायर।
साम्राज्य?
लेकिन वो तो लड़ाई झगड़े, कब्जे। हाँ बिल्कुल, साम्राज्य अक्सर बहुत क्रूर होते थे, इसमें कोई शक नहीं, लोगों का शोषण करते थे, लेकिन उन्होंने अनजाने में एकीकरण में मदद भी की।
कैसे?
उन्होंने बड़े बड़े इलाकों में एक जैसे कानून लागू किए, एक भाषा फैलाई, नापतौल का एक सिस्टम बनाया, सड़कों का जाल बिछाया। उन्होंने छोटी छोटी स्थानीय पहचानों को मिटाकर एक बड़ी साझा पहचान बनाने की कोशिश की, रोमन साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, और ये असर कई बार साम्राज्य के खत्म होने के बाद भी रहा।
अच्छा समझ गया। और तीसरी ताकत?
तीसरी, सार्वभौमिक धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन्स।
जैसे?
जैसे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम। ये धर्म इसलिए खास थे क्योंकि इन्होंने कहा कि उनका सच सिर्फ एक कबीले या एक देश के लिए नहीं है,
बल्कि सबके लिए है।
हाँ, पूरी इंसानियत के लिए। इन्होंने सरहदों के पार लोगों को जोड़ा, एक जैसे नैतिक विचार फैलाए, एक पहचान दी जो राष्ट्रीयता से बड़ी थी।
तो ये तीनों, पैसा, साम्राज्य और धर्म, ये भी एक तरह की बड़ी बड़ी कहानियां ही थी।
बिल्कुल, जिन्होंने धीरे धीरे हजारों सालों में इंसानों को एक ग्लोबल सिस्टम की तरफ धकेला। ये दिखाता है कि इतिहास की एक एक मोटी मोटी दिशा रही है बिखराव से एकता की ओर।
ओके, यह हमें ले आता है सबसे ताजा और शायद सबसे शक्तिशाली क्रांति पर।
हाँ, वैज्ञानिक क्रांति, पिछले बस 500 साल, और इसने तो दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है।
बिल्कुल, इसकी सबसे खास बात क्या है? मतलब खोजें तो पहले भी होती थी।
हाँ होती थी, लेकिन हरारी कहते हैं असली बदलाव खोजों में नहीं बल्कि एक नए नजरिए में था।
कैसा नजरिया?
अज्ञानता की स्वीकृति, द डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस।
अज्ञानता की स्वीकृति मतलब?
मतलब ये मानना कि हमें नहीं पता, ये मानना कि दुनिया के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, हमारे शरीर के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और जो जरूरी ज्ञान है वो पुरानी किताबों या पुराने गुरुओं के पास सारा का सारा नहीं है।
ओह, ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है।
हाँ, पहले क्या माना जाता था कि सारा जरूरी ज्ञान तो पहले ही दिया जा चुका है, वेदों में, बाइबल में, कुरान में, या अरस्तु जैसे पुराने विचारकों की किताबों में, बस उसे सही से समझना है।
हाँ सही।
लेकिन आधुनिक विज्ञान इस सोच पर खड़ा हुआ कि नहीं, हम बहुत कुछ नहीं जानते और नया ज्ञान हमें खुद खोजना होगा। कैसे? ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके।
तो मुझे नहीं पता या इग्नोरेमस,
ये मानना ही विज्ञान की असली ताकत बना।
हरारी तो यही कहते हैं।
इसी सोच ने हमें पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाने और नई खोजें करने के लिए प्रेरित किया।
लेकिन विज्ञान अकेला तो नहीं बड़ा होगा, मतलब खोज करने के लिए पैसा चाहिए, साधन चाहिए।
बिल्कुल सही पकड़ा। हरारी यहाँ एक बहुत मजबूत तिकड़ी की बात करते हैं, एक गठबंधन।
तिकड़ी कौन कौन?
विज्ञान, साम्राज्य और पूंजी, साइंस, एम्पायर एंड कैपिटल।
अच्छा, ये कैसे जुड़े थे?
देखिए, यूरोपीय देशों ने दुनिया भर में अपने साम्राज्य फैलाए। क्यों? ताकत और दौलत के लिए। उन्होंने समुद्री यात्राओं पर पैसा लगाया, नई जमीनें खोजी, जैसे कैप्टन कुक की यात्राएं।
हाँ।
इन यात्राओं पर वैज्ञानिकों को भी भेजा गया। उन्होंने नए पौधे, जानवर, नक्शे, संस्कृतियां खोजी। इससे विज्ञान भी बढ़ा और साम्राज्य को भी नए इलाके और संसाधन मिले।
और पूंजी कहां से आई?
वो आई पूंजीवाद से, कैपिटलिज्म से। पूंजीवाद इस विश्वास पर टिका है कि भविष्य में तरक्की होगी और उस तरक्की के लिए आज पैसा लगाना, कर्ज देना फायदेमंद है।
मतलब क्रेडिट?
हाँ, क्रेडिट। बैंकों ने, सरकारों ने, कंपनियों ने बड़े बड़े वैज्ञानिक और खोजी प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया इस उम्मीद में कि भविष्य में इससे बड़ा मुनाफा होगा।
तो खोज से मुनाफा, मुनाफे से और खोज, ये चक्कर चलता गया।
एग्जैक्टली। और इसी तिकड़ी ने पिछले 500 सालों में दुनिया को इतनी तेजी से बदला है।
और यहीं पर हरारी फिर से वो सवाल पूछते हैं।
हाँ, खुशी का सवाल।
इतनी ताकत आ गई, इतना ज्ञान, इतनी दौलत, कम से कम कुछ देशों में, पर क्या हम वाकई ज्यादा खुश हैं?
वो इस पर काफी सोचते हैं और उनका झुकाव ना की तरफ ज्यादा लगता है।
क्यों?
शायद इसलिए कि हमारी उम्मीदें हमारी हालत के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। जैसे ही हमें कुछ मिलता है, हम उससे ज्यादा चाहने लगते हैं।
ये बात तो है, हेडोनिक ट्रेडमिल जैसा कुछ।
हाँ, कुछ वैसा ही। तो शायद सच्ची टिकाऊ खुशी पकड़ना बहुत मुश्किल है। हमारे शिकारी संग्राहक पूर्वज शायद हमसे कम चीजों में ज्यादा संतुष्ट थे, कौन जाने।
ये सोचने वाली बात है। और ये हमें किताब के बिल्कुल आखिर में ले आता है, सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हिस्से पर।
हाँ, होमो सेपियंस का अंत, द एंड ऑफ होमो सेपियंस।
ये सुनने में ही डरावना लगता है।
हाँ, पर हरारी का तर्क है कि हम आज ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस,
हाँ,
जिनके जरिए हम शायद पहली बार लाखों साल के इतिहास में खुद जीवन को डिजाइन करने की ताकत हासिल कर रहे हैं।
मतलब अब तक तो एवोल्यूशन, प्राकृतिक चयन चलता है।
हाँ, नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन अब हम शायद इंटेलिजेंट डिजाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, पर यह डिजाइन भगवान का नहीं, हमारा अपना होगा।
हम अपने बच्चों के जीन्स बदल सकेंगे, अपनी उम्र बढ़ा सकेंगे, शायद अमर हो जाएं।
या शायद ऐसी सुपर इंटेलिजेंट एआई बना दें जो हमसे कहीं ज्यादा काबिल हो। ये सब संभावनाएं अब दूर की कौड़ी नहीं लगती।
और यहीं पर वो सबसे गहरा सवाल आता है।
हाँ,
हम क्या बनना चाहते हैं?
व्हाट डू वी वांट टू बिकम? ये सवाल तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल हरारी पूछते हैं। हम क्या चाहना चाहते हैं?
व्हाट डू वी वांट टू वांट?
हम क्या चाहना चाहते हैं, इसका क्या मतलब?
मतलब जब हमारे पास अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को और अपनी चेतना को भी बदलने की ताकत आ जाएगी, तो हम कैसी इच्छाएं चुनेंगे? हम किस तरह का बनना चाहेंगे?
ओह, ये तो बहुत आगे की बात है। हाँ, क्योंकि अब हमारे पास देवताओं जैसी ताकतें आ रही है, पर क्या हमारे पास वैसी समझदारी, वैसा विवेक, वैसा मकसद है?
जैसा हरारी ने लिखा है, असंतुष्ट और गैर जिम्मेदार देवताओं से ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है जो ये नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं।
बिल्कुल। और वो देवता कौन है? हम, आज के इंसान। ये हम पर ही एक बहुत तीखी टिप्पणी है।
वाकई दिमाग घूम जाता है ये सब सोचकर। तो इस पूरी जबरदस्त यात्रा से, इन बड़े बड़े आइडियाज से, हम अपनी रोज की जिंदगी के लिए क्या निकाल सकते हैं?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। मतलब ठीक है, इतिहास समझ लिया, भविष्य की चिंता कर ली, पर आज क्या करें?
मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज जो ये किताब करती है वो है हमारी आलोचनात्मक सोच को, क्रिटिकल थिंकिंग को जगाना।
कैसे?
किताब पढ़ने के बाद आप अपने आसपास की दुनिया को शायद थोड़ा शक की नजर से देखने लगते हैं। आप उन कहानियों को पहचानने लगते हैं जो हमारी जिंदगी चलाती हैं।
जैसे?
उसके लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। या पैसा, क्यों हम कागज के टुकड़ों के लिए इतनी मेहनत करते हैं? या किसी कंपनी का ब्रांड, या समाज के नियम, शादी क्यों करनी है, करियर क्यों बनाना है।
हाँ, ये सब भी तो कहानियां ही हैं।
बिल्कुल। तो आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, ये कहानियां आई कहां से, कौन सुना रहा है, और क्या ये वाकई मेरे या सबके भले के लिए हैं।
सही बात है। और दूसरा फायदा मुझे लगता है ये हमें एक बड़ा नजरिया, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है।
मतलब
जब हम आज की समस्याओं को, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या देशों के बीच झगड़े हों या समाज में बंटवारा हो, जब हम इन्हें 70,000 साल के इंसानी इतिहास के स्केल पर देखते हैं,
हाँ,
तो शायद हमें उनकी गहरी जड़ें समझ आती हैं, और शायद हम छोटी मोटी बातों में कम उलझते हैं, थोड़ी विनम्रता आती है कि हम कितने छोटे हैं इस बड़ी कहानी में।
ये भी सही है। और तीसरा पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है वो है खुशी के बारे में फिर से सोचना।
हाँ, वो तो बार बार आता है किताब में।
क्या हम सच में उन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिनसे खुशी मिलेगी, या हम भी उस लग्जरी ट्रैप में फंसे हैं, ज्यादा पैसा, बड़ा घर, नई टेक्नोलॉजी, क्या यही है असली खुशी?
ये किताब हमें रुककर सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर क्या मायने रखता है। शायद खुशी का रास्ता कुछ और हो।
हाँ, और चौथा पॉइंट?
शायद बिजनेस और इकोनॉमिक्स को समझने में भी मदद मिलती है।
वो कैसे?
अरे, कंपनियां, ब्रांड, शेयर बाजार, ये सब भी तो साझा विश्वास और कहानियों पर ही चलते हैं।
हाँ, एक कंपनी की वैल्यू सिर्फ उसकी बिल्डिंग या मशीनों में नहीं होती, उसकी साख, उसकी कहानी, उसके ब्रांड में होती है। लोग उस कहानी पर यकीन करते हैं, इसलिए पैसा लगाते हैं।
तो ये लीडरशिप, मार्केटिंग, मैनेजमेंट सबके लिए सोचने वाली बात है।
तो कुल मिलाकर मेरे लिए जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये कि हम सब कहानियों से बनी दुनिया में रहते हैं। हमारी हकीकत काफी हद तक वो है जिस पर हम सब मिलकर यकीन करते हैं।
हाँ,
ये जानना एक तरह से ताकत भी देता है, क्योंकि अगर हम कहानियां बदल सकते हैं तो शायद दुनिया भी बदल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा डराता भी है, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं, देश, धर्म, कानून, पैसा कितनी नाजुक बुनियाद पर खड़ी हैं, बस एक साझा विश्वास पर।
सही कहा। और मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो शायद यही थी कि तरक्की हमेशा सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती, और हमेशा अच्छी हो जरूरी नहीं।
हाँ, वो कृषि क्रांति वाला तर्क,
हाँ, उसने मुझे वाकई हिला दिया। और दूसरा, खुशी का सवाल। इतिहास में हम जीत, हार, राजा महाराजा, इन सब की बातें करते हैं, पर आम इंसान खुश था या नहीं, इसकी बात कितनी कम होती है।
सही।
और भविष्य की बात, कि हम शायद इंसान होने के मतलब को ही बदलने जा रहे हैं। ये किताब जवाब कम देती है, पर सवाल बहुत जबरदस्त पूछती है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है।
बिल्कुल, सेपियंस सिर्फ इतिहास की किताब नहीं है, ये फिलॉसफी है, ये साइंस है, ये हम सबके बारे में एक बहुत जरूरी बातचीत शुरू करती है।
हाँ,
ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और सबसे जरूरी कि हम कहां जा रहे हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब, और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारा अंश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।